ओम शांति, ओम शांति। आज के खुले सत्र में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। अभी हम माननीय अतिथिगण को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय कविता दीदी जी, जो कि संयुक्त प्रभारी आगरा जोन सब जोन भरतपुर से हैं, आप अपना मंच पर स्थान लेंगे। आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य महाराज जी, जो कि ऋषिकेश से पधारे हैं, आप अपना मंच पर आसन ग्रहण करेंगे। आदरणीय पूज्य भाई श्री हिरेन पंचाल, कथावाचक गांधीधाम से हमारे बीच पधारे हैं, आप भी आकर अपना आसन ग्रहण करेंगे। ब्रह्मवेता दिव्य प्रकाश स्वामी प्रबोधानंद महाराज जी, वो भी सोलापुर से हमारे बीच पधारे हैं, वो भी मंच पर आकर आसन ग्रहण करेंगे। आदरणीय राजयोगिनी पार्वती दीदी जी, जो कि प्रभारी बरेली उत्तर प्रदेश से हैं, वो भी आकर अपना मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय श्री संजय भाई उपाध्यक्ष व्याकरणाचार्य बड़ौदा से हमारे बीच पधारे हैं, वो भी अपना आसन ग्रहण करेंगे। आदरणीय राजयोगिनी सोम प्रभा दीदी जी, जो कि सब जोन इंचार्ज सोलापुर से हैं, वो भी मंच पर, हम उनका आवाहन करते हैं, वो भी अपना मंच पर स्थान लेंगे। और अभी हम सभी 3 मिनट के लिए प्रभु स्मृति में बैठेंगे। अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करते हैं कि आज की आदरणीय जो मंच है, उसका गुलदस्ते और बैज के द्वारा सम्मान करेंगी, स्वागत करेंगे। अभी हमारे बीच महामंडलेश्वर स्वामी जी का बहने बैज के द्वारा सम्मान कर रही हैं। आप करकल ध्वनि से उनका स्वागत करते रहेंगे। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए जब तक कि मंच का सम्मान हो रहा है। सभी नाश्ता तो कर चुके हैं, तो ताकत तो रहनी चाहिए। कम से कम हमारे ज्ञान सरोवर तक तो आवाज जाना ही चाहिए ना। सभी का बहने बहुत दिल से, बहुत प्यार से सम्मान कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। आज का जो हमारा विषय है, दिव्य जीवन का आधार आध्यात्म। कहते हैं भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और सुधार लेना प्रगति है। तो अभी कहेंगे एक और एक मिलकर दो होता है, ये हमें गणित सिखाता है, और एक मिलकर 11 होता है, जो हमें संगठन सिखाता है। एक और एक मिलकर एक हो जाना, ये हमें प्रेम सिखाता है, और एक में एक मिलकर शून्य हो जाना, ये हमें आध्यात्म सिखाता है। और आध्यात्म मार्ग पर जब हम चल पड़ते हैं, तो शांति और शक्तियां हमारे जीवन में अपने आप प्रवेश करती हुई आती जाती है। जैसे जब आप चंद्रमा को देखते हैं, तो आप भगवान की सुंदरता को देखते हैं। जब आप सूर्य को देखते हैं, तो आप भगवान की शक्ति को देखते हैं। जब आप आईना देखते हैं, तो आप भगवान की सबसे अच्छी रचना को देखते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें रचा है। दैवी संस्कृति ब्राह्मणों की एक संस्कृति है, परंपरा से संबंध की संस्कृति है, परस्पर सम्मान हम सभी तभी सभी को दे पाएंगे जब गुणग्राही दृष्टि होगी। किसी का हम अवगुण न देखें, क्योंकि अवगुण तो एक दो ही होता है, लेकिन 98% व्यक्ति के अंदर विशेषताएं होती हैं। क्योंकि जिसको हम देख रहे हैं वो ईश्वर की रचना है, और ईश्वर ने जो रचा है वो बहुत सुंदर रचा है। जब हम उस पर नजर आत्मिक नजर से देखेंगे, आत्मिक भाव से देखेंगे, तो यही तो आध्यात्मिकता है। अध्ययन का मतलब ये नहीं कि हमने रट लिया, मेरा अध्ययन है या नहीं है इससे मतलब नहीं है। अध्ययन माना दृष्टि में, कृति में, हमारे बोल में, हमारे भाव में ये अध्ययन समाहित हो जाए। आध्यात्म का सबसे बड़ा मूल आधार है आत्मिक स्वरूप की स्थिति, जो कि शिव बाबा ने बहुत प्यार से हम बच्चों को सिखाई है। जब हम आत्मिक भाव से देखेंगे तो गुणग्राही हो ही जाएंगे। हरेक के प्रति ईश्वरीय ये रचना है, हम उस सम्मान से देखें, क्योंकि विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। तो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आज की मुख्य वक्ता आदरणीय कविता दीदी जी हमारे बीच हैं, जो सादा जीवन, उच्च विचार, मिलनसार नेचर है आपकी, और आप एक कुशल वक्ता हैं जिन्होंने लेख लद्दाख तक प्रहरियों की सेवाएं प्रदान की हैं। भरतपुर के अनेकानेक सेवा केंद्रों का आप कुशल संचालन भी कर रही हैं, और धार्मिक प्रभाग की एजुकेटिव मेंबर हैं, संयुक्त प्रभारी आगरा सब जोन की हैं। तो दीदी से निवेदन करेंगे कि वो आए और मंच पर अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय दीदी जी,
सभी स्नेह और प्यार से बोले ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना धर्म प्रेमी संत महात्मा और राजयोगिनी तपस्विनी ब्रह्मा कुमारी बहने एवं भाई, आज हम यहाँ धार्मिक प्रभाग के माध्यम से विगत दो दिवस से वर्तमान परिस्थितियों में आध्यात्म समाधान कैसे बन सकता है, इस विषय पर गहन मनन, चिंतन, श्रवण, मनन, पठन आदि कर रहे हैं। इन सब के बावजूद कुछ निष्कर्ष, कुछ मक्खन, कुछ समाधान नजर आ रहा है, और वो समाधान नजर आ रहा है उस शक्ति का नाम, उस पद्धति का नाम है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता अर्थात अंतर जगत में विराजमान जीवन देने वाली उस सचेतन सत्य शक्ति पर स्थित होकर चिंतन करना। विगत दो दिवस से हम सुन रहे थे कि अपने से ही हम अपनी रूरिहान नहीं कर पाए, अपने को ही राहत नहीं दे पाए, लेकिन जब इस धार्मिक सम्मेलन में हम यहाँ इकट्ठे हुए, तो चाहे राजयोग का प्रथम दिवस हो और चाहे वक्ताओं के, अनुभवी तपस्वी वक्ताओं के विचार हों, उन्होंने हमें इस ओर मार्गदर्शन दिया, इस ओर हमारे अंतर जगत की तरफ हमारे चिंतन का मुख किया कि हम अपने आप को इस वहिर जगत से दिखाई देने वाली देह को संचालन करने वाली शक्ति आत्मा को भी कुछ समय दें, संकल्प दें, चिंतन दें और उसके स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास डालें, जिसको ही दूसरे शब्दों में आध्यात्मिकता की प्रथम सोपान कहा जाता है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने गुफाओं में बैठकर तप करना कहा गया। उस काल में गुफाओं में बैठकर तप करना कहा जाता था, लेकिन वर्तमान सिनेरियो में अपने स्तन रूपी मकान के गुफा मन के अंदर जब आध्यात्मिक चिंतन करते हैं उसको अंतर्मुखता कहा जाता है, और उस अंतर्मुखता से हमारा वेस्ट, हमारी नेगेटिविटी और हमारी औपचारिकताएं, परंपराएं, रूढ़िवाद, कट्टरता खत्म हो जाती है और उससे प्रादुर्भाव होता है एफिशिएंसी, एक्सीलेंसी, जिसे स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं दिव्यता अर्थात श्रेष्ठता। सर्व शास्त्रों में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, जिसके अंतर्गत कहा गया है योगः कर्मेषु कौशलम्। योग किससे? आज के विषय के अंतर्गत मैं आपका ध्यान इस ओर खिंचवाना चाहूंगी कि सर्वप्रथम आत्मा और शरीर का योग हो जाए तो एफिशिएंसी और एक्सीलेंसी हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। अर्थात जब हमारी आत्मा का शरीर पर नियंत्रण होता है, आत्मा का शरीर से योग होता है, हम सबकी चाहना है हमारे देश का हर मानव सुदृढ़, श्रेष्ठ और दिव्य संस्कारों से सुशोभित हो जाए। हम भारतवासी ऋषि मुनि जो ये धार्मिक प्रेमी यहाँ इकट्ठे हैं, इनका हरेक की चाहना है कि हमारे मन के अंदर कल्याणकारी शिव संकल्प उत्पन्न हो और हमारी मन की सुंदरता श्रेष्ठ भावों से भरपूर रहे। चाहना तो है हमारी, लेकिन वास्तविकता की स्थिति कुछ इससे परे है। विगत 3 दिनों से आपने इस ज्ञान सरोवर के सुंदर परिसर के वातावरण से अपने मन को अनुभव किया होगा कि आपके मन के अंदर शिव संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, जिसका प्रभाव आपकी दृष्टि पर, आपके शरीर की इंद्रियों पर पड़ रहा है, और वो शारीरिक इंद्रियां जो वह चाहते हुए भी उनकी अनुपालना नहीं कर पाते थे, उन मर्यादाओं की, इन सिद्धांतों की परिकल्पना एकमात्र समझते थे, लेकिन आज इस परिवेश के अंतर्गत, इस चिंतन मंथन के अंतर्गत वो हमारी चाहना आत्मिक शक्ति बनकर हमारी इंद्रिय अर्थात शरीर के द्वारा संचालित और प्रवाहित हो रही है, और एक आत्मविश्वास उत्पन्न हो रहा है कि जो हम पढ़ते थे, सुनते थे, चाहते थे, उसको प्रैक्टिकली करना और कराना हमारे लिए आसान होगा। ये धार्मिक सम्मेलन का आयोजन इसी लक्ष्य को लेकर किया गया है। अंतर्मुखता वो ऐसी गुफा है जो हमारी भारतीय संस्कृति के चिर सनातन मूल्यों को सहज ही हमारे संस्कारों में, हमारी सोच में और व्यवहार में परिणित कर देती है। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। यदि मैं अपने आप को सचेतन आत्मा सोचती हूं, मैं अपनी दृष्टि से बंधुत्व भाव आत्मवत सर्वभूतेषु सबको देखती हूं, तो स्वाभाविक है, विज्ञान का नियम है रिएक्शन रिएक्शन, अपोजिट एंड नेगेटिव। जो हम करते हैं उसका हमको वैसा ही मिलता है। यदि मैं सबके प्रति शुभ भावना आत्मभाव रखती हूँ, आत्मिक दृष्टि रखती हूँ, अपना निजी संबंध भाव इटर्नल रिलेशन की स्मृति से अपने व्यवहार में आती हूँ, तो जो आज हमारे सामने चुनौतियां हैं, सत्य की अनुपालना, सत्य को अपने संस्कार बनाकर दिव्यता और श्रेष्ठता को लाना, वो सरल और सहज हो जाता है, चुनौती ना होकर एक सॉल्यूशन हो जाता है। मैं इतिहास के पन्नों पर नजर डाल रही थी तो मैंने पाया कि कलिकाल में सतयुग त्रेता में जहां देवता देव स्वरूप में दिव्यता की अलौकिकता की छटा से इस भारत की भूमि को विश्वगुरु बनाकर अपना जीवन यापन अलौकिकता दिव्यता श्रेष्ठता से करते थे। कलिकाल की वेला आई, सतयुग त्रेता के बाद द्वापर आया, लेकिन द्वापर युग में मेरे ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने, पूर्वजों ने, हमारे आदर्शों ने हमें वो तपोबल दिया था जिसके माध्यम से ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र को जब मैं याद करती हूँ तो उन्होंने भी चुनौतियों के काल के अंतर्गत अपने आत्मबल, अपने मनोबल, अपने तप के बल से सारे विश्व की मानवता, प्राणी मात्र के प्रति आत्मभाव और सद्भावों के प्रकंपनों को प्रवाहित करते हुए चुनौतियों को रचनात्मकता में और एक समाधान में, एक श्रेष्ठता में परिवर्तित करके दिखाया। ये हम पढ़ते हैं, ये हम इस आत्मविश्वास के साथ पुनः उस कलिकाल की तमोप्रधानता की दलदल से, देह अभिमान की समस्त दुर्घटनाओं के दलदल से निकलकर उन पर ठहरते हैं कि संभव है, हो सकता है, हुआ है और किया गया है। वो हमारे ऋषि मुनि कहलाते थे, जहां उनकी मानसिक मनोवृत्ति से, जहां उनकी व्यवहारिक शुचिता और श्रेष्ठता से शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीने लगते थे। इतना ही नहीं, हिंसक मनोवृत्ति का पशु शेर गुरु वशिष्ठ के चरणों के तलवों को चाटने लगता था, सेवा भाव उसके अंतर उत्पन्न हो जाता था। कहां वो हिंसक और कहां वो तप के बल से मानसिक शुचिता और आत्मिक वृत्ति के प्रयोग समस्त चर अचर जगत पर करने से वो अपनी हिंसक मनोवृत्ति को ही परिवर्तित नहीं कर लेता था, बल्कि गुरु ऋषि की सेवा करने लगता था। इसी को कहा गया है मेरे आध्यात्म के अंदर, मेरी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत श्रेष्ठता। सिर्फ मानसिक परिवर्तन नहीं, लेकिन उसका रचनात्मक और उसकी श्रेष्ठता को उसके जीवन में ला देना। यदि हिंसक शेर जैसे के अंदर तप के बल से ऋषियों ने करके दिखाया, तो क्या हम ऋषियों की संतान आज इसको नहीं कर सकते? ये संगोष्ठी, ये खुला सत्र हमारे मन के अंदर इन भावों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया गया है कि हम उन्हीं ऋषियों की संतानें हैं और आज की आवश्यकता है कि हम पुनः उन्हीं चीजों को अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन में ला करके उनको फिर से प्रमाणित करें कि कलिकाल जैसे अन्य सभी युग गए हैं, ऐसे इस युग को भी जाना है। और जाना है तो हमें उसको जाते हुए को अपनी आत्मिक चिंतन से, मनोबल से, आत्मशक्ति से हमें उनको दृढ़ता से पालन करना होगा और पालन कराना होगा। उस समय तो गिने चुने टिप्स पर नाम थे जिनके माध्यम से ये सारा कार्य चला। आज आवश्यकता है जितने हम मंच पर और सन्मुख बैठे हुए हैं, वो सब एक एक स्थान से अपने संगठन के एक एक धुरंधर हैं, नुमाइंदे हैं, मुखिया हैं, मुख्य हैं। वो जाकर के अनेकों को ये प्रेरित करें, ये प्रैक्टिकली प्रयोग दें, ताकि उनके जीवन में भी वो चाहना, सोच, कर्म और संस्कारों की एक धारा में परिवर्तित हो जाए। कालचक्र के प्रमाण को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो नैतिक मूल्यों के बल से भी श्रेष्ठताओं को समाज में, व्यक्ति में, परिवार में लाया गया। जैसे हम देखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, जिन्होंने अपनी मर्यादाओं के बल से समाज के अंदर सब कुछ प्राप्त होते हुए भी, लेकिन उन्होंने अपने अंतर संतुलन को, आत्मबल, मनोबल को सुदृढ़ रखा और मर्यादाओं पर चलते हुए उन्होंने एक नैतिक मूल्यों की पालना करते हुए स्थूल और सूक्ष्म के संतुलन की तराजू को संतुलित करते हुए उन्होंने समाज के अंदर मन बुद्धि का संतुलन, आत्मा शरीर का संतुलन, परिवारों के संबंधों का संतुलन, समाज राजा और प्रजा के बीच का संतुलन, देव और असुर के बीच का संतुलन हमें स्थापित किया, जिसके माध्यम से आज वो श्री राम के रूप में हर घर के अंदर, हर मन के अंदर मर्यादाओं को जागृत कर रहे हैं, शाश्वत कर रहे हैं। एक ही उदाहरण नहीं, हमारा संस्कृति का इतिहास भरा हुआ है। हम देखते हैं सत्यनिष्ठ नैतिक मूल्य से युक्त राजा हरिश्चंद्र को। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार पे दृढ़ हरिश्चंद्र को, पर टरे न सत्य विचार। सत्य क्या है? सत्य चर्म चक्षु से दिखाई देने वाला नहीं, बल्कि अंतर चक्षु से दिखाई देने वाला सत्य है, जिस सत्य की अनुपालना से दिशाएं अपना कार्य छोड़ सकती हैं। जड़ हैं, लेकिन आत्मा सचेतन है। सर्वश्रेष्ठ संसार की शक्ति परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव है, और मानव के अंदर निहित वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति आत्मा है। तो उस आत्म शक्ति का हम स्वरूप में स्थित होते हैं, तो नैतिक मूल्य हमारा वरण कर लेते हैं, और राजा हरिश्चंद्र की भांति, राजा मोहजीत मोरध्वज की भांति हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का बल इस सृष्टि को, इस समाज को श्रेष्ठता दिव्यता से आलोकित करता रहा। ये सब उदाहरण है हमारे सामने, जिन्होंने संन्यास लेकर भी किया, तो संन्यास लिए हुए फॉलोअर्स के जो राजाएं बने उन्होंने भी किया। आज पुनः उसी बातों की आवश्यकता, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा उदाहरण है जहां तपोबल नैतिक मूल्यों के बल से बड़ा बल आध्यात्म का बल डायरेक्ट परमात्म शक्ति के द्वारा प्रदत्त है। आप खुले नेत्रों से, अंतर चक्षु के नेत्र से पिछले 3 दिन से अनुभव कर रहे हैं। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने उस सर्वोच्च सत्ता को अपनाया, उसके निर्देशन को अपने जीवन का श्वास बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप असंभव संभव हो गया। वो था परमात्म बल आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा एक पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने आज से 87 वर्ष पहले इस कलिकाल की बेला में ही धारण किया, स्वरूप में लाया, उस कार्य में लग गया, और लगा नहीं, चला अकेला था। लेकिन आज जैसा आप सुनते आ रहे हैं पिछले कुछ लंबे समय से 140 देशों में 25 लाख परिवारों में रहने वाले ब्रह्मचारी, शुद्धनधारी, सत्संग करने वाले, ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले, नियमित उस आध्यात्म मनन और चिंतन को पारिवारिक मूल्यों के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए अनुपालना करने वाले लोगों को उस पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने अपनी परमात्म शक्ति से, अपनी परमात्म आत्म शक्ति से, मनोबल तपोबल की ताकत से जन जन के अंदर उस सत्य सनातन संस्कृति के स्वरूप को निर्धारित कर। यही धारणा हमारी सर्वशास्त्रों में श्रोमणि गीता जो कह रही है, योगः कर्मेषु कुशलम्। एक योग है आत्मा का शरीर से योग। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने हमें योग सिखाया श्रेष्ठ आत्मा का, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा से योग। हम और आप सभी जानते हैं सर्वश्रेष्ठ के साथ योग लगाने से श्रेष्ठ को सर्वश्रेष्ठ ही प्राप्त होगा, और वो है सर्वश्रेष्ठ पिता परमात्मा, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, दया का सागर। तो हम सब बच्चे कैसे उसके, इन सब गुणों के मूरत, क्योंकि जैसा पिता वैसी उसकी संतान, और जब हम उसकी संतान वैसे हैं तो नेचुरल है जो हम सोचते हैं, जो हम धारण करते हैं, जो हमारे स्वरूप में होता है, वो हमारे ओरे से, वाइब्रेशन से इस सृष्टि जगत में संचारित होता है, प्रवाहित होता है। एक साथ सबके वाइब्रेशन अगर शांति के हैं, तो वो शांति पाठ जो हम वर्षों से कर रहे हैं, पृथ्वी शांति, रापह शांति, उद्योगो शांति, वनस्पति शांति, वो मंत्र के साथ साथ अब हमें शांत स्वरूप बनकर शांति के सागर के प्रकंपनों को इस चर अचर जगत में प्रवाहित करना होगा। तभी सृष्टि पर शांति होगी और वो शांति की प्रकंपन की शक्ति मुझे शांत स्वरूप से शांति का अवतार, शांति की शक्ति का मूर्त बनाएगी। ऐसी परिकल्पना को लेकर जब हम यहां से जाएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं, जो पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के एक की धारणा से आज 60,000 समर्पित बहने तैयार हो गई। आज 25 लाख परिवारों की महिलाएं गृहस्थ में रहते हुए तैयार हो गई। एक सुंदर उदाहरण, एक सफल उदाहरण अनेकों के लिए उदाहरण बन जाता है। बहनों भाइयों, वर्तमान समय का आप सब के लिए खुशखबरी है, हुआ था, होगा नहीं, हो रहा है। परमात्मा स्वयं अपनी अनंत शक्तियों को लेकर हम और आप सब के पुण्य के फलों को देने के लिए इस सृष्टि पर आ चुके हैं और आकर हमें पूरे कल्प का विधि और विधान, ज्ञान और अनुसंधान मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की मार्गदर्शना में पिता श्री ब्रह्मा बाबा के अनुसरण में प्राप्त करा रहे हैं, जिसमें हम बहुत लेट हो चुके हैं। 87 वर्ष तो बीत गए, थोड़ा सा समय शेष है। कल आप ये उल्हेना ना देना कि आपने पाया और हमें नहीं बताया। मैं आपको इस अलौकिकता, श्रेष्ठता, दिव्यता के आवाहन के साथ इस शुभ पैगाम दे देना चाहती हूं कि इस जगत नियंता सर्वोच्च सत्ता सर्वश्रेष्ठ परमात्मा पिता का यह अलौकिक कार्य, अलौकिक परिवर्तन की प्रक्रिया का कार्य बड़ी तेज गति से संपूर्णता की तरफ जा रहा है। आपके लिए खुला आवाहन है कि आप आइए और आकर के बहुत ज्यादा नहीं, कुछ मौलिक धारणाएं अपने इस जीवन को जीते हुए परमात्मा पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु की 3 आज्ञाओं का पालन कर लीजिए। पहली आज्ञा उनकी शुरू से लेकर आज तक है कि अपने को देह से न्यारी, देह को चलाने वाली विदेही आत्मा समझो। जैसा चिंतन करते हैं, चेतन का चिंतन हमें चेतनता लाता है, चरित्र का उत्थान करता है, हमारे अंदर अलौकिकता, दिव्यता को लाता है। और जड़ शरीर का चिंतन हमें जड़ता में, निरर्थकता में, व्यर्थ में, विषय विकारों की ओर ले जाता है। यदि मुझे अपनी शुरुआत उदय की तरफ करनी है, श्रेष्ठता की, दिव्यता की, अलौकिकता की तरफ करनी है, तो मुझे पहला परमात्मा आज्ञा का चिंतन, मैं शरीर को चलाने वाली, शरीर की मालिक चैतन्य आत्मा। दूसरा, आत्मा समझकर अपने देह की इंद्रियों का संचालन करना। मन सदैव सबसे सुख पाना, सुख देना चाहता है। जीवन में भी हम सुख पाना और सुख देना चाहते हैं, लेकिन शुरू कहां से हो? सुखदाता परमात्मा से अपना संबंध जोड़कर सुख लेते हुए सबको सुख इंद्रियों से देते जाएं। सोच की इंद्रिय से सुख, दृष्टि की इंद्रिय से सुख, बोल की इंद्रिय से सुख, कर्म की कर्म इंद्रियों से सुख बांटे, तो वो सुख देव हम उस परमात्मा पिता की संतान बन जाएंगे। कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले, सोच के बोले। ये बोल हमारा बताता है कि हमारा सोच क्या है। तीसरी आज्ञा, मैं सृष्टि रंगमंच पर उस परमात्मा पिता की रचना रोल प्ले करने आया हूं, रिटर्न जर्नी। जब हमें वापस जाने का याद रहता है तो हमारे जीवन से व्यर्थ अलबेलापन साधारणता छूट जाती है और परमात्मा की श्रेष्ठ रचना बनकर हम अपने जीवन में अलौकिकता को, श्रेष्ठता को, दिव्यता को धारण करते हैं। आध्यात्मिकता कोई हमसे अलग नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु प्रांत तक और अगले जन्म शुरू होने तक ये साइकिल आध्यात्मिकता का कभी भी किसी मनुष्य आत्मा का छूटता नहीं है, बल्कि वो चलता ही रहता है। आवश्यकता है जीते जी इस आत्मशक्ति परमात्म शक्ति को अनुभव करते हुए हम अपने जीवन में अलौकिकता दिव्यता को लाएं, जैसा कि हम ज्ञान सरोवर में उपस्थित होकर अनेकों भाई बहनों को देखते हुए, अनेकों दादी दीदियों को देखते हुए अनुभव कर रहे हैं। अब सिर्फ देखने और दिखाने की वेला नहीं, अब है वेला दृढ़ संकल्प करके अपनी एफिशिएंसी को, अपनी एक्सीलेंसी को इस आध्यात्मिक गहरे चिंतन के सरोवर में टुबकी लगाकर परिजादा बनने और बनाने की। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप बने और अपने अनेक फॉलोअर्स को, अनेक अनुयायियों को, अनेक आपके पीछे चलने वाले भाई बहनों को भी बनाएं, ऐसी मंगल कामना और भावना के साथ भारत को हम आभा में तभी देख सकेंगे, तभी बना सकेंगे जब हम स्वयं बनेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय दीदी जी का, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हम सभी के बीच स्पष्ट किया। कहना चाहूंगी कि एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक पल एक दिन को बदल सकता है, और एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है, इस दुनिया को बदल सकता है। तो हम सभी तो यहाँ बहुत बैठे हुए हैं, अगर सभी लक्ष्य ये पक्का कर लेंगे कि हमको खुद को बदलकर अब हमें दूसरों को बदलना है, कहने की आवश्यकता नहीं है, जब जीवन हमारा बदल जाता है तो वो हमें देखकर स्वयं ही बदल जाते हैं। तो अभी हमारे बीच आज की सभा के मुख्य अतिथि हमारे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य महाराज जी, जो कि ऋषिकेश से पधारे हैं, उनके लिए कहना चाहूंगी, महक उठा है ये घर आंगन, महक उठा है ये घर आंगन, जब से आप पधारे हैं ऐसा एहसास होता है जैसे जन्मों से आप हमारे हैं, जन्मों से आप हमारे हैं। आप प्रकृति प्रेमी हैं, साधनाशील हैं, मधुर हैं, रूहानियत से संपन्न हैं, व्यक्तित्व में आपके आध्यात्म का ओज है और चेहरे पर साधना का तेज है। तो आपको हम सुनना चाहेंगे आदरणीय महामंडलेश्वर जी।
महादेव महादेव, मंच पर उपस्थित परम पूज्य महामंडलेश्वर जी, प्रबुद्ध प्रबुद्ध वक्ताएं सारे, विशिष्ट अतिथि गण तथा इस सभागृह में उपस्थित राजयोगिनी माताएं बहनें, राजयोगी तथा भक्तगण, आज का विषय है दिव्य जीवन का आधार अध्यात्म है। इस विषय से ही कुछ बातें ज्ञात होनी चाहिए, परिभाषित होनी चाहिए। जीवन पद से, जीवन शब्द से हम क्या ग्रहण करते हैं, दिव्यता का अर्थ क्या है, और ऐसे दिव्य जीवन का आधारशिला, नींव, बुनियाद बना हुआ अध्यात्म भी क्या है, कुछ चीजों को बिना समझे ही जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो कई बार दुराग्रह हो बैठता है, परंतु जब हम समझ के चीजों को ग्रहण करना चाहते हैं बुद्धि खुल जाती है, बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि अवगुंठित नहीं रहती, कुंठित होकर के नहीं बैठती। जी तो हम सभी लोग रहे हैं, परंतु जीवन शब्द से जीने का अर्थ ही क्या है? वैसे संस्कृत भाषा में जीवन शब्द जल के लिए प्रयुक्त होता है। जल का स्वभाव है बहते रहना, द्रवित होते रहना, और दूसरा स्वभाव है जल का प्यास बुझा देना। जो तृषार्त है, तृषा से ग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति की, पशु की, चाहे वो चिड़िया हो, पशु हो, मनुष्य हो, देवता हो, यक्ष किन्नर हो, जो प्यासा है उसकी प्यास बुझा देना, उसकी तड़प मिटा देना, ये जीवन, ये जल का स्वभाव है। अरे भाई, शास्त्रकारों ने भी जीवन शब्द जब जीने के लिए प्रयुक्त कर दिया तो इसमें भी कुछ अर्थ निहित जरूर होगा। बहते रहना एक अर्थ है जीवन का। हमारा जीवन, भगवान भाष्यकार जैसे कहते हैं कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः, भैया आया दिन और फिर रात, बदलते रहते हैं मौसम और बीतता रहता है काल। जीवन गुजरता जाता है, और जब लंबा समय गुजरता है तब मनुष्य जाकर के जग जाता है कि हां, जीवन तो हमारे हाथों से निकल गया, पता भी न चला। जैसे अंजलि में धरा हुआ जल उंगलियों के बीच में से सरक जाता है, पता भी नहीं चलता, वैसे ही सारा जीवन चला गया और केवल पश्चाताप ही हाथ में रहता है। कुछ मधुर, कुछ कटु स्मृतियों के साथ मनुष्य इस दुनिया को विदा कर देता है। जीवन है ही क्या? जिसकी आधारशिला हम अध्यात्म शास्त्र को बनाना चाहते हैं, भाई जीवन यही है। दो ही चीजें हैं, दो ही छोर हैं, जैसे नदी के लिए दो ही किनारे हैं और दो किनारों के बीच नदी बहती चलती है। दो ही किनारे हैं, एक मैं और एक जो मैं नहीं हूं वह अहम, और एक है दूसरा है अनहम। अनहम को तो आप कह लो कि ये जगत है, कि जिसके साथ सतत संपर्क हो रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक ये जगत, स्त्री पुरुष बालक युवा, सूर्य चंद्र पहाड़ नदियां समुद्र, ये सारा जीवन, सारा जगत, और इस जगत के साथ होने वाली मेरी प्रतिक्रिया क्रिया, मेरा संबंध, यही जीवन है। क्योंकि नदी जो है दोनों किनारों से जुड़ी हुई है, केवल एक किनारे से नदी नहीं बहती है, दोनों के बीच बहती है, दोनों किनारों को मान लो जोड़ा हुआ है, एक और हम, एक और मैं, और एक और वह जो मैं नहीं वह, दोनों को जोड़े यह जो क्रिया प्रतिक्रिया का एक सिलसिला जो चल रहा है, यही एक दृष्टि से जीवन है। आप इस दुनिया से किस संबंध से जुड़े हुए हो, और दुनिया का अर्थ केवल यही नहीं समझ लेना चाहिए कि पत्थर और ईंटों का ही नाम दुनिया होता है। अरे दुनिया का अर्थ ये जो विस्तृत सारा संसार फैला हुआ है चारों ओर, वह किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ऐसी कौन सी तार है, ऐसा कौन सा संबंध है, ऐसा कौन सी आप दोनों के बीच में जोड़ने वाला ऐसा कौन सा वह धागा है। साधारणता देखा जाए तो मनुष्य दुनिया से स्वार्थ से ही प्रेरित होकर के दुनिया के साथ संबंध बनाता है। जहां जहां हमारे स्वार्थ की पूर्ति होती है वहां वहां अपना स्नेह भी जोड़ लेता है। कभी स्नेह न भी हो तभी भी दिखावा जरूर करता है स्नेह का। क्या चीज है कि जो आपको दुनिया से जोड़े हुए हैं? विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी संबंध इस दुनिया के साथ हो रहा है उसके लिए हमारा विषय ही यह है कि इसकी नींव अध्यात्म बने। और अध्यात्म इसलिए बने ताकि एक आमूलाग्र परिवर्तन आ जाए, मनुष्य में भी परिवर्तन आ जाए और मनुष्य जिस समाज के साथ जिस दुनिया के साथ संबंध रखता है वहां पे भी उस परिवर्तन की कुछ झांकी देखने को मिले, इस समाज में भी उसके आंदोलन देखने को मिले। इसीलिए ये सवाल है कि यह जीवन, इस जीवन का जो आधार वह अध्यात्म शास्त्र, और यदि ऐसा जीवन अध्यात्म शास्त्र को आधार बना करके चले तो वह जीवन साधारण न रहेगा, उसमें दिव्यता प्रकट होगी। और दिव्यता का अर्थ है दिव धातु है, उसका अर्थ होता है प्रकाश करना, प्रकाशने, जिससे शब्द देव भी बनता है, आलोक प्रकाश। ज्ञान है, सुख का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, प्रेम का प्रकाश है। जहां इस प्रकार अपने जीवन में अलौकिकता होती है, ज्ञान का प्राधान्य होता है, प्रीति प्रेम स्नेह का प्राधान्य होता है, आनंद का प्राधान्य होता है, प्रकाश होता है, वह जीवन दिव्य कहलाता है। कब होगा? क्योंकि ऐसे जीवन के खोज में तो सभी लगे हुए हैं। कोई नहीं चाहता कि मेरे जीवन में, अपने खुद के जीवन में प्रकाश हो, प्रेम का प्रकाश हो, सुख का प्रकाश हो, आनंद का प्रकाश हो, शांति का प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो। कौन नहीं चाहता भाई? सब लोग यहां चारों ओर दर दर ठोकर खाते हुए घूम रहे हैं, केवल एक ही बात की इच्छा लेकर के, तमन्ना लेकर के, प्रकाश हो, सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, प्रसन्नता हो, यही प्रकाश हो। परंतु मनुष्य निराश हो जाता है और यही कहते हुए इस दुनिया से विदा ले लेता है कि ना जी, जिस आनंद के, जिस सुख के, जिस शांति के खोज में हम निकले हुए थे, जब से होश संभाला तब से हमने इसी सुख का, इसी आनंद का परिमार्गण किया। परंतु हां, इतना भी नहीं कह सकते कि मिल ही गया। कहीं पे निराश होकर के चले जाते हैं। परंतु एक बात यह है कि साधक के जीवन में यद्यपि वो ये भी न कह सके कि जी पूरी तरह से तृप्त हो, परंतु ये कह सकता है कि जी हां, जो तृप्ति का मार्ग है वो प्रकाश की किरण है, वो मुझे दिख रही है, भले सूर्य का दर्शन हुआ न हुआ। इंग्लिश में जैसे कहते हैं प्रोवर्बियल लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बस सुरंग के उस ओर बहुत बारीक एक प्रकाश की किरण दिखती है और इस व्यक्ति को पता चलता है मैं फंसा हूं इस सुरंग में, लेकिन वहां पे प्रकाश दिख रहा है। इसका अर्थ यह है कि यहां से निकलने का कुछ मार्ग है। आओ जी, आप और हम जीवन में जिस प्रकाश को खोज रहे हैं, जिस सुख को खोज रहे हैं, मिलेगा कैसे? क्योंकि एक ओर दिखता है भोगवाद, और भोगवाद का अर्थ यही है, क्योंकि जीवन का आधारशिला कई लोगों ने इस भोगवाद को ही बना रखा हुआ है। और भोगवाद का अर्थ है कि ये दुनिया जैसी भी है, मनुष्यों की हो कि पशुओं की हो कि पेड़ों की हो कि और कुछ पंछियों की क्यों ना हो, इसका उपभोग करना, ये न केन प्रकारेण मैं इसका उपभोग कर लूं। देखिएगा क्या उद्दंडता है इसके बुद्धि की कि ये कहता है कि ये सारी दुनिया मेरे उपभोग के लिए है। उपनिषद कदापि इस प्रकार के वक्तव्य से सहमत न हो पाएगी, क्योंकि उपनिषद सारे अध्यात्मवाद का मूल बुनियाद उपनिषदें हैं, वेद हैं। परंतु भोगवाद यही कहता है कि जब मैं यहां पे हूं तो कर लूं मैं उपभोग, हिडोनिज्म, आओ जितना मिलता है मौका वहां वहां मैं अपने स्वार्थ को, अपनी भोग परायणता को आगे बढ़ाऊं, भोगवाद है। और अध्यात्मवाद बिल्कुल जुदा, अध्यात्मवाद ये कहेगा कि जरा नियंत्रण लाओ, इंद्रियों पे नियंत्रण हो, बुद्धि पे नियंत्रण हो, शरीर पे नियंत्रण हो। और भोगवाद कहेगा कि नियंत्रण किस बात के लिए, अरे नियंत्रण ही होता तो हम भोग किसका करें, मिल रहा है लूटो, और वह इस दुनिया को लूटने के लिए आया है। तो एक ओर है भोगवाद, ऐसी बुद्धि जो जीवन की आधारशिला बनी हुई है, और दूसरी ओर है अध्यात्मवाद। यदि अध्यात्मवाद जीवन की नींव बन जाए तो यहां बदलाव आएगा, क्योंकि भोगवाद में रचा पचा डूबा हुआ जो व्यक्ति है वह अपने चारों ओर केवल संघर्ष संघर्ष ही खड़ा करेगा, वह अपने चारों ओर अतृप्ति ही अतृप्ति फैलाएगा। वो ये कहेगा कि मैं नहीं जानता तुम तृप्त हो कि न हो, लेकिन मैं तुमको निचोड़ के तुमसे अपनी तृप्ति जरूर पाना चाहूंगा। दुनिया के साथ जिसको कहते हैं सिंबायोटिक रिलेशनशिप, बिल्कुल ही नहीं, एक्सप्लॉयटेटिव, शोषण करना, यही उसकी भोगवाद में छिपा हुआ बल है, और अध्यात्मवाद बिल्कुल जुदा है। अध्यात्मवाद तो ये कहेगा कि यह चारों ओर फैली हुई दुनिया तुम्हारे उपभोग का साधन नहीं है, ये चारों ओर फैली हुई दुनिया परमेश्वर का एक विचित्र स्वरूप है, विराट स्वरूप है, नाना नाम रूपों में फैला हुआ ये संसार परमेश्वर ही अलग अलग रूपों में नटा हुआ है। आओ इस दुनिया के साथ प्रेम का संबंध बनाओ, भक्ति का संबंध बनाओ, और फिर देख लो कि तुम्हारे हृदय में एक तृप्ति का झरना बहने लगता है, तुम्हारे बुद्धि में एक शांति का पर्व छाने लगता है। और जब ऐसी तृप्ति ऐसी शांति तुम्हारे भीतर समाई होगी तो आओ इस दुनिया को भी तुम वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास नहीं वो तो तुम दुनिया को कभी दे ही नहीं सकते हो। अरे देना लाख चाहोगे लेकिन देने के लिए तुम्हारे पास ऐसी कौन सी मौलिक चीज है कि जो तुम दे सकते हो। यदि भीतर तृप्ति हो, भीतर आनंद हो, भीतर तुम्हारे शांति हो तभी तो दे पाओगे। यदि भोगवाद की दलदल में फंसे हुए हो तो बस वासना और वासनाओं का और उपभोगवाद भोगवाद का ही केवल एक क्या कहते हैं स्टॉर्म, स्टॉर्म को क्या है शब्द, बवंडर यदि बवंडर होगा तो भाई हम इस दुनिया को दे क्या सकेंगे, क्या करोगे परमेश्वर की सेवा में पेश, केवल अपनी अतृप्ति केवल अपनी अशांत व्यक्ति जिस किसी को भी छुए तो उसको भी अशांत कर दे। अरे भस्मासुर इसीलिए तो बना हुआ है, भस्मासुर के भीतर यही शक्ति है कि जिस चीज को छू दे उसका भस्म कर दे। सुंदर से सुंदर वस्तु को, फूल को भी छू दे तो उसका भस्म कर दे। यदि भीतर ऐसी चीज है और ऐसी दिव्यता का आधार अध्यात्म शास्त्र है। बस समय की कमी है, हमारे पास और एक दो मिनट हैं। आपको इतना ही बताना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति कहते हैं। संपत्ति का अर्थ होता है ऐसी कोई मौलिक, ऐसा मौलिक धन, ऐसी पूंजी। और वह पूंजी भगवान श्री कृष्ण शुरुआत करते हैं कि अहिंसा सत्यम क्रोधः। कभी देख लीजिए, शायद यहां पे आपके प्रबुद्ध जो योगी लोग हैं अथवा जो महात्मा यहां आते हैं उनसे कभी इस 16वें अध्याय का आप विवरण देख लीजिए। बहुत अद्भुत चीज है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही हे अर्जुन, ये दैवी संपद जो है ये तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन का मूलाधार है। तुम परमात्मा को ब्रह्म जानते हो कि परमात्मा को अन्यत्र कहीं बैठने वाले मानते हो, इससे कोई मतलब नहीं। परंतु तुम्हारे जीवन में अहिंसा सत्यम अक्रोध ध्यानाभ्यास प्रेम तृप्ति, इनका महत्व है कि नहीं है, या तुम्हारे जीवन में केवल भोग और भोग का ही महत्व है? इन दोनों को जरा देख लीजिए। एक दृष्टि है भोगवाद की, एक दृष्टि है अध्यात्मवाद की। यदि अध्यात्मवाद जीवन की आधारशिला बने तो जीवन में दिव्यता का प्राकट्य निश्चित है। और उस दिव्यता का अर्थ है यही है कि व्यक्तिगत रूप से आप तृप्ति और शांति से भर जाओगे और सामाजिक जीवन में भी आपके अगल बगल में भी, चाहे वह परिवार हो, चाहे वह आपका समाज हो, चाहे वह आपका राष्ट्र हो अथवा विश्व हो, आप ऐसा केंद्र बनोगे कि जहां से शांति और प्रेम के आंदोलन ही बाहर निकलेंगे। इसलिए आध्यात्मिक शास्त्र अथवा आध्यात्म शास्त्र यही अपने जीवन का आधार बनाए और अपने जीवन को दिव्य तृप्त पवित्र बना ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और इस संस्था को भी अभिनंदन देता हूं कि इसी प्रकार के आयोजन करते रहे। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं जो आपने ये स्पष्ट किया। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा शुरू से ये लक्ष्य रहा कि पहले हम बदलें, फिर परिवार बदले, पड़ोस बदले, गांव बदले, शहर बदले, देश बदले, तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि आंखों की दौड़ ने तो हर व्यक्ति को अनुभव करा दिया है कि आंखों से देखकर जब हम आकर्षित होकर भागते हैं तो फिर रोना भी आंखों से ही होता है। तो अब अंतर जगत में आंतरिक माना अंदर में जाना होगा, तब आध्यात्म हमारे जीवन में आएगा। और जब हम अपने जीवन में ले आएंगे और जो भी शब्द हम दूसरे से कहेंगे वो पक्का अपने जीवन में उतारेगा, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में नहीं है और हम दूसरे को सूचित करते हैं या बताते हैं तो वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। तो हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। अभी आज के सभा के माननीय अतिथि परम आदरणीय पूज्य भाई श्री हिरेन पंचाल, जो हमारे बीच गांधीधाम से पधारे हैं, कहना चाहूंगी भाई जी के लिए, नजर को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो
तो सितारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। आप एक कथावाचक हैं, हजारों की भीड़ में संदेश देते हैं, भले घर गृहस्थ में रहिए लेकिन अपने जीवन को बदलिए, नजरिए को बदलिए। तो अभी हमारे बीच अपने शब्द रखेंगे आदरणीय भाई जी।
श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, श्री कृष्णाय वयम नुमः। ओम शांति। आज यहां पर फिर से आने का अवसर मिला, मैं अपने आप को बड़ा ही सद्भागी समझ रहा हूं। सबसे पहले उपरम चेतना परम शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, उनका स्मरण करते हुए इस संस्था की सर्वे सर्वा दादी रतन मोहिनी जी का भी स्मरण करते हुए यहां पर विराजमान सभी परम संतों के चरणों में वंदन करते हुए सभी ब्रह्मा कुमारी हमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार भाइयों और आप सभी के चरणों में मेरे शत शत प्रणाम। जय सिया राम। तीसरी बार आने का यहां पर अवसर मिला है आज। और कभी किसी ने पूछा कि आप शिविर में जाते हो तो क्या चार्ज रहता है वहां पर? कई शिविरें होती है तब कहने का, बड़े सद्भाव से कहने का ऐसा मन होता है कि कोई भी चार्ज लिए बिना रिचार्ज करने की यह भूमि है, यह विश्वविद्यालय उसी का नाम है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, जहां कोई चार्ज नहीं है लेकिन हम रिचार्ज होने के लिए यहां पर आते हैं और जब जब बाबा पुकारेंगे तब तब आते रहें, ऐसी मन में परम भावना भी है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये ज्ञान सरोवर की भूमि जैसे स्वर्ग भूमि हो ऐसा लग रहा है। मैं किसी की बात का खंडन नहीं करता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसे हम परम धाम कहते हैं वो परम धाम यहां पर ही है, वो भूमि यहां पर ही है, जहां पर जिनके वाइब्रेशंस, जिनके तरंग, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मेरा निजी अनुभव ऐसा रहा है कि जैसे बाबा बुला रहे हो, आओ मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें प्यार दूं, मैं तुम्हें सत्य प्रेम और करुणा से भर दूं, इसलिए तुम मेरे पास आओ। ऐसी अनुभूति इस भूमि पर मैंने की है। हमारे एक स्नेही है, उनका एक शेर है बाबा कि मैंने दर्पण को साफ किया, मैंने आईने को साफ किया तो मैं दिखाई दिया, मैंने आईने को साफ किया तो मैं दिखाई दिया, लेकिन मैंने मैं को साफ किया तो तू दिखाई दिया। यहां दो अर्थ में ले सकते हैं, मैं को साफ किया मतलब कि मेरे अहम को, मेरे अहंकार को जब मैंने मिटाया तो परमात्म तत्व की अनुभूति में कर पाया, और दूसरा अर्थ यह भी कर सकते हैं कि मैंने अपने मैं को मिटाया मतलब कि मैंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं कौन हूं, मैं परम आत्मा हूं, परम चैतन्य स्वरूप हूं, अविनाशी हूं, अजर अमर हूं, तब भी परमात्मा की अनुभूति हुई, परमात्मा की प्राप्ति हुई ऐसा लगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहां से जो लोग जाते हैं अपने घर तो वो कैसी अनुभूति करते होंगे, या तो मनोरमा दीदी है या रामनाथ जी है, हमारे नारायण भाई है, उनकी क्या अपेक्षा होगी हमारे प्रति। तो ऐसा लगता है मुझे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यहां से यदि कह सके कि वो जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, वो जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, क्योंकि चरागों को अपने कोई मकान नहीं होते, क्योंकि चरागों को कोई अपने मकान नहीं होते। जैसे हर व्यक्ति यहां बैठकर ऐसा सोच रहा हो या ऐसा कह रहा हो कि मैं उसको भूल गया, ये हो नहीं सकता। उस चैतन्य शक्ति को, उस परमात्म शक्ति को जो हमारे में विद्यमान है, हमारे में विराजमान है, मैं उसको भूल गया, ये कौन मानेगा? किसी चिराग के बस में धुआं नहीं देखा। यदि धुआं हटा तो फिर जो ज्ञान की प्राप्ति है, जो ऊर्जा की प्राप्ति है, जो अग्नि है, उसका प्रतिकरण होने ही वाला है। ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है और वही संभव हो सकता है एक साधना का जो मार्ग यहां पर बताया जाता है, राजयोग। साधना के जो भिन्न भिन्न मार्ग है उसमें से एक बड़ा ही अच्छा और दिव्य मार्ग कि जिनके माध्यम से हम अपने आप को समझ सके कि हम कौन है, हम अपनी प्रतीति कर सके हम किसके हैं, हम क्यों हैं, मेरा क्या कर्तव्य है, वो अब हम सब जान सके, ऐसा मुझे यहां पर लगता है। और अंत में और भी एक कहूंगा मैं शेर कि यहां क्यों बार बार आने की इच्छा होती है तो भी ऐसा लगता है, ये वशिम बरेलवी साहब का शेर है कि तुम्हारा प्यार तो सांसों में सांस लेता है, तुम्हारा प्यार तो सांसों में सांस लेता है, जो होता नशा तो एक दिन उतर नहीं जाता, जो होता नशा तो एक दिन उतर नहीं जाता। आज 87 साल, 140 देश, 20 से 25 लाख परिवार, 50 से 60 हजार ब्रह्मा कुमारी बहनें, करीबन 5 से 10 हजार ब्रह्मा कुमारी भाइयों का ये परिवार, ये वर्षों से ये साधना में इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, तो कुछ तो रहा होगा इसके फाउंडेशन में, इसकी नींव में कुछ ऐसा अध्यात्म रहा होगा कि जिसने सभी को जकड़ रखा है और जुड़ते ही जा रहे हैं, परिवार बड़ा होता ही जा रहा है। तो मुझे जो संक्षिप्त में थोड़ी बात करनी है आज के विषय के ऊपर कि दिव्य जीवन का आधार अध्यात्म, उसे कैसे कहा जाए। वैसे तो हमारे यहां दो शब्द प्रचलित ज्यादातर माने गए हैं, एक धर्म और दूसरा अध्यात्म। ऐसा कहा गया कि यतो यभ्युदयानिह श्रेय संसिद्धि सधर्म। किसे धर्म कहे? जीवन का समग्र और भौतिक उत्कर्ष जिसमें समाहित है उसे धर्म कहा गया। जिसके अंदर लौकिक उन्नति मतलब अविद्या कहे और जिसके अंदर आध्यात्मिक परम गति जिसको विद्या कहे, वो दोनों की प्राप्ति हो सकती है, वह धर्म है। लेकिन हमें नकी करना है कि हमें क्या चाहिए। हमें लौकिक उन्नति चाहिए, वो पसंद करते हैं, या हमें आध्यात्मिक परम गति चाहिए, क्या चाहिए हमें? हम धर्म के बारे में ऐसा भी कहते हैं कि जो धारण करता है वो धर्म है, धारयति इति धर्म। जैसे पृथ्वी है, उसने सभी को धारण कर रखा है, और धारण करना सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ये व्यक्ति पर निर्भर है। हमने क्या किया, धर्म को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह वगैरह में बांट दिया, विभाजित कर दिया। लेकिन अध्यात्म को देखने जाए तो आप अपने आप से यह प्रश्न पूछे कि अध्यात्म को खंडों में विभाजित करना मुमकिन है? हम उसको विभाजित कर सकते हैं? अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना यही अध्यात्म है। अपने स्वरूप अर्थात जीवात्मा को अध्यात्म कहा है, ये मैं नहीं कहता, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने कहा कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। जीवात्मा जो है वही अध्यात्म है, तो उसको जानना वही अध्यात्म है। आजकल देखने जाए तो लोगों ने धर्म के साथ कुछ ऐसे शब्दों को भी जोड़ दिया है। कई लोग कहते हैं कि आजकल कट्टरता जुड़ गई है धर्मों के साथ, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कई लोग। लेकिन यह भी प्रश्न होता है कि जिस धर्म के साथ कट्टरता शब्द का प्रयोग किया जाए उसे धर्म कहे या न कहे, वो भी एक उलझा हुआ प्रश्न है। क्या कहे? आप सभी जलंधर की वो कथा से प्रचलित है कि मरता नहीं था सती वृंदा के पातिवृत्य धर्म के कारण, तो भगवान नारायण को भी जलंधर का रूप लेना पड़ा और सेवा करने लगी सती वृंदा, और अंत में पातिवृत्य का खंडन हुआ और जलंधर मरा। समाज में जब भी धर्म का बख्तर पहनकर यदि अधर्म का आचरण किया जाए तो अधर्म को मारने के लिए भी पहले उस धर्म के बख्तर को तोड़ना पड़ेगा। असलियत में वो धर्म नहीं है लेकिन धर्म की एक भ्रांत कल्पना कह सकते हैं उसे। जैसे कि हमारे हाथ में किसी एक उंगली में यदि सड़ा हो जाए और उसके कारण पूरे हाथ को काटना पड़े ऐसी परिस्थिति निर्माण होने जा रही हो, तो उससे अच्छा है कि उस उंगली को काट दिया जाए, ऐसा किया जाता है। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे हैं कि जब खुद व्यक्ति अधर्म करता है लेकिन वो धर्म की दोहाई देता है मरते समय। रामचरितमानस में बाली बोला है, बाबा जी बैठे हैं हमारे अयोध्या के और सभी संत महागण, धर्म है तू अवतरे हूं गोसाई, धर्म है तू, धर्म है तू अव तरे हूं गोसाई, मारे हूं मोही व्याध की नाई। जीवन अधर्म है लेकिन अंत समय भी बाली ने परमात्मा को भी पड़कार दी है कि मुझे क्यों मारा, धर्म की दुहाई, आपका तो अवतार ही धर्म के लिए। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मैं आपका द्रोही हो गया, सुग्रीव आपको प्यारा हो गया, मेरा क्या अवगुण है। अंत समय बाली है वो कर्म है, कर्म जो है वो अंत समय भी परमात्मा को भी पड़कार फेंकता है कि क्या है इसका उत्तर दीजिए, छोड़ता नहीं वो। तब भगवान ने भी कहा कि अनुज बंधु भगिनी सुत नारी सुनुसठ कन्या सम एचारी, अपनी बहन, अपनी पुत्री, पुत्र वधु, भाई की पत्नी, ये सभी अपनी कन्या के समान है और इसके साथ यदि संबंध रखा जाए तो वो पापाचारी है, उसे मारने में कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं। सांप्रत समय में हम देखने जाए तो धर्म के अंदर कभी कभी दंभ भी देखा जा रहा है, समझिएगा मेरी बात को। आज हम देख रहे हैं कि आंगन में यदि तुलसी का क्यारा हो लेकिन उसी के घर में जाओ तो फ्रिज में आपको अंडे मिलेंगे, कुछ कहेंगे कि हम लोग इनके यहां पानी नहीं पीते, ये अस्पृश्य है। लेकिन वही व्यक्ति यदि किसी का खून पीना हो तो बिना छाने ही पी जाएगा। कोई व्यक्ति कहेगा कि हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते, लेकिन वही व्यक्ति रिश्वत खाने में अचकाता नहीं है, उसे कोई परहेज नहीं है। महीने में एक दिन यदि हम सत्यनारायण की कथा का आयोजन करें लेकिन बाकी के 29 दिन यदि असत्य का ही आचरण रहा जीवन में, तो क्या हमें सफलता मिल पाएगी, क्या सिद्धि मिल पाएगी, क्या प्राप्त कर पाएंगे? तो उससे भी हम कह सकेंगे कि इसको धर्म कहे या न कहे, वो टिकेगा नहीं क्योंकि वास्तव में है ही नहीं। धर्म की मूल अवभावना अलग ही है, कुछ अलग ही बात कही है लेकिन हम उसको कुछ समझ नहीं पाए। हमारे गुजराती में एक, हमारे कच्छ में एक सती रानी हो गई तोरादे तोरल, उनकी एक पंक्ति यदि आपकी इजाजत हो तो मैं गाऊं, गुजराती में है। देखा देखी करवा जाए ए तो अधूरिया कहवाए, दीवो लेने कुए पड़वा जाए एवी राणी सती एवी वाणी सती तोरल गाय। मरना ही है, नक्की किया है कि कुएं में जाकर अपनी जान दे देनी है, तो भी हाथ में दिया लेके जा रहा है, जा रही है कि कहीं ठोकर न लग जाए।